साथियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी से मैं दिनकर पातुकर, आज हमारे साथ मोबाइल वाणी पर रूबरू होने जा रहे तीसरी सरकार के प्रणेता एवं नेहरू युवा केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी। नमस्कार सर जी।
जी नमस्कार। नमस्कार दिनकर जी।
सर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आज 25 जनवरी अर्थात मतदाता दिवस है और कल 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस है, और ऐसे समय में आपके माध्यम से 28, 29 एवं 30 जनवरी को ग्राम स्वराज नया संदर्भ चिंतन एवं संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस चिंतन एवं संकल्प शिविर के माध्यम से क्या यह अभियान में किस तरह सहायक सिद्ध होगा।
दिनकर जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने प्रसंग उठाया है। वास्तव में जैसे आप करें, आज मतदाता दिवस है और कल 26 जनवरी है, फिर 27 और 28, और आप जानते हैं 29 जनवरी भी बहुत ऐतिहासिक है। 29 जनवरी वो तारीख है जब हम सबको पता है, 30 जनवरी वो तारीख है जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, और वो शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है देश में महात्मा गांधी की। 30 जनवरी को, 30 जनवरी से एक दिन पहले 29 जनवरी को महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी रोज अपनी डायरी लिखा करते थे, तो 29 जनवरी की रात में जो उन्होंने डायरी लिखी वो गांधी की अंतिम वसीयत कही जाती है, क्योंकि उसके बाद बापू डायरी नहीं, बापू की डायरी तो लिखी नहीं गई, तो वो लास्ट डायरी का लास्ट पृष्ठ है, और इसीलिए उसको अंतिम वसीयत के रूप में ये देश स्वीकार करता है गांधी 29 जनवरी को, और 30 जनवरी उनकी शहादत का दिन है। तो ये दोनों तारीखें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और ये भी महत्वपूर्ण है कि लगभग आप देखिए आज 75 वर्ष हो रहे हैं उस शहादत के, लगभग 75 48 से आप जोड़िए तो लगभग 75 वर्ष पूरे हो गए उनकी शहादत के, और उन्होंने जो रास्ता दिखाया था वो ग्राम स्वराज्य का दिखाया था देश को, क्योंकि उन्होंने हिंद स्वराज जब 1909 में वो जो पानी की जहाज से यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने सुना है ना हिंद स्वराज लिखा था, हिंद स्वराज में भारत के आजादी का एक चित्र खींचा था, भारत की संस्कृति का, और दुनिया में जिस तरह का लोकतंत्र चल रहा है सब पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा था उसमें। और जब वो हिंदुस्तान आए 1915 में, आकर यहाँ स्थायी रूप से रुके और पूरे भारत का भ्रमण किया और स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नायक बने। उन्होंने करीब 36 में जाकर ये अनुभव किया कि जब पूरे गांव को ठीक से समझा और पूरे तब उन्हें लगा कि भारत की आजादी जो हिंद स्वराज्य के रूप में हम देख रहे हैं वो तभी संभव है जब ग्राम स्वराज जाएगा। उन्होंने देखा कि इस देश में तो ग्राम स्वराज्य का एक लंबा इतिहास है, तो वो ग्राम स्वराज्य के रूप में आएगा, तो उन्होंने ग्राम स्वराज्य का नारा दिया, और लगभग सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो गांधी की विचारधारा से प्रभावित थे वो सारे लोग ये मान के चल रहे थे कि जब देश आजाद होगा तो इस देश में गांधी की नीतियों के आधार पर, जहां विकेंद्रीकरण के आधार पर सिर्फ सत्ता का, सत्ता और अर्थ दोनों का विकेंद्रीकरण होगा और सत्ता नीचे तक जाएगी और ये ग्राम स्वराज होगा। यहाँ तक कि मैंने एक बार और संदर्भ दिया था कि लुई फिसल ने जब गांधी जी से पूछा था 1942 में, जबकि लगने लगा था देश आजाद हो जाएगा 42 के आंदोलन के साथ, तो लुई फिसल ने पूछा था बापू अब आप क्या करेंगे जब देश तो आजादी की ओर जा रहा है आपका, तो गांधी ने कहा था कि जो सत्ता चार शहरों में सिमटी हुई है मैं उन्हें इस देश के 7 लाख गांवों में बांटूंगा। तो 7 लाख गांवों में सत्ता बांटने का स्वप्न था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, महात्मा गांधी का, और उसी को उन्होंने ग्राम स्वराज्य का नाम दिया था। आज आजादी और उन सबके जब 75 साल बीत रहे हैं, आजादी का हम महोत्सव मना रहे हैं, गांधी की शहादत के 75 साल बीत चुके हैं, तो उस ग्राम स्वराज को लेकर नए सिरे से बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई नए संदर्भ आ गए हैं ना। 73वें संविधान संशोधन के बाद जो गांधी का सपना था कि गांव पंचायत सरकार होगी, ब्लॉक पंचायत सरकार होगी, जिला पंचायत, और तो प्रांतीय पंचायत सरकार और अखिल भारतीय पंचायत सरकार तो अब नहीं बन पा रही है क्योंकि संसदीय सरकार है, लेकिन अभी जिला स्तर से लेकर जिला पंचायत सरकार, ब्लॉक पंचायत सरकार और ग्राम पंचायत सरकार तो बन गई है, 73वें संविधान संशोधन ने उसको बना दिया है। तो ऐसे में अब देखने और समझने की, चिंतन करने की आवश्यकता है बैठ करके कि वो इन बदली हुई परिस्थितियों में और जो हमारे तमाम नए संदर्भ हैं, नई चुनौतियां हैं, क्योंकि गांधी ने जब ग्राम स्वराज का सपना देखा था तो आज से लगभग 100 साल पहले ये सपना देखना शुरू किया था। तो 100 सालों में तो भारत के गांव बहुत बदल गए ना, पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया बदल गई है। उस बदली हुई परिस्थितियों में और जो नए नए चैलेंजेज आए हैं, नई नई चुनौतियां खड़ी हैं, उनके साथ ग्राम स्वराज कहाँ फिट बैठता है या उसकी क्या प्रासंगिकता बनती है, इस विषय को लेकर चिंतन बराबर चल रहा था। और तीसरी सरकार जब हम कहते हैं तो तीसरी सरकार या पंचायत वो तो एक हथियार है ना, वो एक माध्यम है उसी ग्राम स्वराज को प्राप्त करने का। तो पिछले 8 सालों से जो तीसरी सरकार के बारे में एक समझ पैदा की जा रही थी कि ये पंचायत भी सरकार है, पंचायत का संस्थागत रूप होना चाहिए और संस्थागत रूप होने के लिए सदस्यों को आगे आना होगा, तो ये सारे अभियान के ये पक्ष तो चल रहे थे, उसके गवर्नेंस के पक्ष कि ग्राम सभा एक्टिव हो, ग्राम पंचायत एक्टिव हो, उसकी कमेटियां एक्टिव हो, ये सब गवर्नेंस का इशू था। लेकिन इस गवर्नेंस के इशू में जो थोड़ी बहुत सफलता मिली है या जो थोड़ा बहुत बदलाव आया है, समझ बनी है, उसके आधार पर अब ये हुआ कि अब हम जब 9वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं तो हमें अब ग्राम स्वराज्य के उस बिंदु पर अर्थात गांव की खुशहाली के लिए, गांव के स्वराज्य के लिए बैठकर बहुत स्थिति से सोचना होगा मित्रों। और इसीलिए उन विषयों को लेकर के देश के जो प्रबुद्ध जन है कुछ उनको बुलाया गया है, जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं कुछ वो बुलाए गए हैं, और कहां ये प्रयाग के कुंभ क्षेत्र में हो रहा है। आप सब जानते हैं कि यहाँ जब 12 साल पर कुंभ रखता था हर्षवर्धन के समय में, तब यही चिंतन हुआ करता था बैठकर, तमाम ऋषि मुनि किया करते थे, राजा लोग किया करते, जो राज्य सत्ता चलाते थे वो बैठ के करते थे, विद्वान लोग शिक्षक लोग करते थे, और वो अपने अपने दिशा के रास्ते तय करते थे, नए रास्ते अगले 12 साल के लिए तय किया करते थे। तो इससे बढ़िया अवसर क्या हो सकता है, संगम का तट है, गंगा नदी का किनारा है, और जो यहाँ की ऊर्जा है इस पूरे कुंभ क्षेत्र की, वहाँ 28, 29, 30 को लगभग देश के 100 लोग बैठ रहे हैं अलग अलग राज्यों से आकर के, उसमें पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, ग्राम सभा के सम्मानित सदस्य भी हैं, और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, और शिक्षा से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, वो लोग बैठेंगे, बैठकर इस पर चर्चा करेंगे और कई संदर्भों को एक साथ जोड़ेंगे इसमें अपने चिंतन में। पहला ये कि गांधी का ग्राम स्वराज क्या था, उस ग्राम स्वराज के जो 12 बुनियादी सिद्धांत है, वो 12 बुनियादी सिद्धांत आज की तारीख में कितने प्रासंगिक हैं और कहाँ कहाँ फिट, कहाँ कहाँ किनके साथ उसको जोड़ा जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि वो जो वैकल्पिक संविधान बना था, एक ड्राफ्ट बना था और जो संविधान सभा के सदस्यों को बांटा गया था, जिसमें ग्राम स्वराज्य के लिए ग्राम पंचायत सरकार की पूरी परिकल्पना की गई थी, वो क्या थी, एक बार उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, तो उस पर भी लोग चिंतन करेंगे। और तीसरा ये कि जब संविधान सभा में पहला वाचन आया था, पहला ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था, गांव और पंचायत जब उसमें से गायब थी, तो उसको लेकर के लगभग 4 दिन तक बहस चली थी, बड़ी लंबी बहस चली थी। गांधी ने भी उसकी तरफ उस समय संकेत किया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने भी लिखा था जो अध्यक्ष थे, कि हम तो ये चाहते थे कि गांव और पंचायत के आधार पर इस देश का संविधान बने, क्या हो रहा है। उस पर 4 दिन तक बहस चली और 4 दिन बहस चलने के बाद फिर अलग से उसके लिए जब सेशन बुलाया गया था, तब उसमें एक प्रस्ताव के संतानम का आया था, जिसके आधार पर एक समझौता जैसा हुआ था कि ठीक है, वर्तमान परिस्थितियों में एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार बननी चाहिए, संसदीय सरकार की तरफ ज्यादा लोगों का झुकाव था, वो बना, लेकिन तय किया गया कि आगे आने वाले समय में जब परिस्थितियां बदलेंगी तब इस देश में फिर से ग्राम सरकार की परिकल्पना। और इसीलिए कहा गया था, आपको पता हो कि अनुच्छेद 40 जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ग्राम पंचायतों का संगठन बनाएगा और उन्हें वो सारे अधिकार और दायित्व सौंपेगा जो उसे सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में स्थापित करेगी। तो वो तो दबा रह गया संविधान में लंबे अरसे तक, 73वें संविधान संशोधन में वो बाहर आया। तो एक तरह से वो देखना है कि संविधान सभा में क्या क्या बहसें हुई, उन सारे संविधान निर्माताओं ने किस रूप में गांव को देखा था और पंचायतों को देखा था, समझा था, और उसके पक्ष में क्या तर्क दिए थे। और इतना ही नहीं, बल्कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित किया गया था, जो हम पढ़ते हैं उसके उसमें उद्देशिका में, जब लोग भारत के लोगों ने उसे स्वीकार किया था, उस स्वीकृति से पहले जो संविधान सभा की सहमति आई थी, तो उसमें बहुत सारे वरिष्ठ सदस्यों की इसी बात पर सहमति दी गई थी, बाकायदा उसका रिकॉर्ड है, आज की है, आप पार्लियामेंट में उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं उसकी लाइब्रेरी में, वो रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा था कि हम इस संविधान को इसलिए स्वीकार करते हैं कि आने वाले समय में जब जनता की चुनी हुई पार्लियामेंट बनेगी तो वो पार्लियामेंट एक बार फिर से ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ेगी। इसीलिए इस अनुच्छेद 40 हमें वो रास्ता देता है, इसीलिए हम इसको स्वीकार करते हैं संविधान को। तो मित्रों आज एक समय है कि यहाँ बैठ करके हम लोग उन सब पर गांधी की अंतिम वसीयत पर चिंतन करना। पहले दिन पूरा चिंतन का क्रम होगा और दूसरे दिन जो अलग अलग साथी आए हुए अलग अलग वर्गों के लोग होंगे, सिविल सोसाइटी के, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम सभा के सम्मानित सदस्य, ये सारे लोग अलग अलग समूहों में बैठेंगे और ये है कि जो रास्ता निकलेगा, जो नए संदर्भ आएंगे, नई चुनौतियां आएंगी, उसके लिए आगे का क्या रास्ता बनता है, उस रास्ते पर विचार करेंगे और अपने लिए खुद रास्ता तय करेंगे। और रास्ता तय करके वो दूसरे दिन जाएंगे, मतलब 30 जनवरी को संगम तट पर जाएंगे, बापू को श्रद्धांजलि देंगे उनकी शहादत के दिन पर, और फिर वहीं पर संकल्प लेंगे कि अपने यहाँ लौटकर हम ग्राम स्वराज्य के इस यात्रा को फिर से शुरू करेंगे। ये है कुल मिलाकर के ये जो चिंतन शिविर और संकल्प शिविर हो रहा है उसका ये आशय है।
सर जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज 25 जनवरी अर्थात मतदाता दिवस और कल 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस, तो इस अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
कुल मिलाकर तीनों का एक ही संदेश है कि भारत के संविधान ने जो 26 जनवरी को लागू हुआ, जो अभी मैंने ये देना चाहते हैं कि उसने इस देश के लोगों को एक नई पहचान दी, नागरिकता की पहचान दी, पहली पहचान नागरिकता की दी। मैं कहता हूँ उससे पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे या किसी राजा की प्रजा थे, हमारी क्या पहचान थी? ये वर्षों की गुलामी झेल रहा था ये देश, और इस देश के नागरिक अपने को दो रूपों में देख पा रहे थे, वो किसी राजा की प्रजा थे या किसी अंग्रेजों के गुलाम थे। देश आजाद हुआ, उस आजादी के बाद हम सबको एक नई पहचान मिली नागरिक होने का, और उस नागरिकता की पहचान के साथ ही जो हमें अधिकार मिले उसी में फिर हम मतदाता बनते हैं 18 साल में, और उसी मतदाता के बाद हम 21 साल में जाकर इस देश के लीडर बनने की स्थिति में आते हैं, देश का नेतृत्व संभालने की स्थिति में आते हैं। और आज जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ आज तो लगभग 32 लाख लोगों को नेतृत्व का अधिकार स्थानीय सरकार में मिलता है, 32 लाख लोगों का, चंद हजार लोगों को राज्य सरकारों में मिलता है और कुछ 100 लोगों को केंद्र सरकार में मिलता है, लेकिन 32 लाख से ज्यादा और नगर पालिका भी अगर जोड़ लें तो लगभग जाकर के 34 लाख लोगों को सीधे सीधे अधिकार मिलता है नेतृत्व का, डायरेक्ट जो जिसको कहिए डायरेक्ट निर्णय के अधिकार के साथ ये लोग जुड़ते हैं। तो आज के नागरिकों को या लोगों को यही संदेश देना है कि मतदाता दिवस, संविधान जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, गणतंत्र का दिवस, और अंत में गांधी की शहादत का दिन, जो उन्होंने बड़ा सपना इस देश के लिए देखा था, तीनों को जोड़ कर देखिए, एक साथ जोड़ के देखिए। और अभी तो 23 जनवरी थी ना, सुभाष चंद्र बोस की का जन्म दिवस था, इन सारे चारों चीजों को एक साथ जोड़ के देखिए और देश के लिए एक बड़ा सपना सुभाष चंद्र बोस जी ने देखा था, महात्मा गांधी ने देखा था और इस देश के संविधान ने देखा है, संविधान निर्माताओं ने देखा है, और सबके निचोड़ में आया था कि इस देश का नागरिक और इस देश का मतदाता वही अंत में आगे ले जाएगा। और मतदाता के रूप में जहां वो मैंने सरकार बनाने का काम करता है, वो घूम करके या अभी जो चुनाव के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से, लेकिन गवर्नेंस के माध्यम से जो उसकी भूमिका मिलती है, शासन चलाने में जो उसकी भूमिका मिलती है, वो पंचायतों और नगर पालिकाओं में सीधे मिलती है उसको मतदाता के रूप में। तो ये एक बड़ा अवसर है देश के मतदाताओं के लिए, और ऐसे नौजवान साथी जो मतदाता बनना चाहते हैं उन्हें विशेष रूप से उनको सबसे पहले बधाई जिन्होंने आज 18 साल पूरा किया है और मतदाता सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें बधाई हो और शुभकामनाएं है उनके लिए। लेकिन इसी के साथ उनसे अनुरोध भी है, उन्हें सचेत भी करते हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो लैस होने जा रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, और उस जिम्मेदारी को, इस देश को, नए भारत को बनाने में उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका कि आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से रूबरू होकर अपनी महत्वपूर्ण बातें साझा की। इस अवसर पर छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी आज समस्त देश के मतदाताओं को मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है, साथ ही साथ गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता है।